सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्चायाणं नमो लोये सवसाहूणं जय उधरसेननाहो जेन महाकम्मपयडिपाहुडसेलो बुद्धिशिरेणोदरियो समप्यो फुफदन्तस। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित देवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है। और यह उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। सातवीं पुस्तक अभी हमारा जो खुद्दा बंध शुरू हुआ है उसमें बंधक का प्रकरण चल रहा है। पृष्ठ संख्या 82 पर हम आए हैं। अलग अलग मार्गणाओं में हम देख रहे हैं कौन कौन सी क्या क्या बात है। अलग अलग मार्गणाओं में जीव किस कारण से होते हैं, हमने देखा ना, नरक गति में जीव की किस कारण से जाते हैं आदि आदि हमने बातें देखी थी। अब यहाँ हमने गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा और वेद मार्गणा देखे। अब कषाय मार्गणा की बात देख रहे कि कषाय मार्गणा, पहले मार्गणा यानी अन्वेषण खोज। कषायों की अपेक्षा अगर हम जीवों का विभाजन करेंगे तो कोई कषाय वाले जीव होंगे, कोई कषाय रहित होंगे। तो 10वें गुणस्थान तक के जीव कषाय सहित वाले हैं और 11वें 12वें 13वें 14वें और सिद्ध भगवान में अकषायी है। अब जो कषाय वाले हैं उसमें कोई तो क्रोध कषाय है, कोई मान कषाय, कोई माया कषाय, कोई लोभ कषाय। तो ये जीव कैसे होते हैं ऐसा प्रश्न भी उठाएंगे। देखिए अब हम 40 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। कषायानुवादेन क्रोध कषाय, मान कषाय, माय कषाय, लोभ कषाय नाम कदम भवदी। तो उसका अर्थ नीचे देखते हैं। कषाय मार्गणानुसार जीव क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोभ कषाय किस कारण से होता है। तो यहाँ तो निमित्त की भाषा बोलेंगे। होता है तो अपने उपादान के कारण और स्वयं विभाव रूप परिणमता है, परंतु यहाँ सर्वत्र निमित्तों की भाषा है। तो फिर पूछेंगे किसके उदय से होते हैं, यक्षोपशम से होते हैं, क्षय से होते हैं, क्या है बात, उसकी बात बताएंगे। क्रोध दो प्रकार का है। पहले वो प्रश्न का ही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ये 40 नंबर का सूत्र प्रश्नात्मक है, वहां प्रश्न चिन्ह भी देना आवश्यक है। तो क्रोध दो प्रकार का है, द्रव्य क्रोध और भाव क्रोध। द्रव्य क्रोध है ना क्रोध नाम का कर्म, चारित्र मोहिनी का भेद है ना क्रोध, उसको द्रव्य क्रोध कहते हैं। और भाव क्रोध है ना जीव का क्रोध परिणाम। तो भाव क्रोध की उत्पत्ति के निमित्त भूत द्रव्य को द्रव्य क्रोध कहते हैं। भाव क्रोध की उत्पत्ति में जो निमित्त है, ऐसा जो द्रव्य है, ऐसा कौन सा द्रव्य है, तो हमने देखा तो कारमान वर्गना से जो कर्म रूप परिणमित हुआ है और जो चारित्र मोहिनी नाम का जो क्रोध नाम का कषाय कर्म, कषाय जब कहेंगे अकेला तो जीव का भाव और कषाय कर्म कहेंगे तो द्रव्य कर्म की बात है, उसको यहाँ द्रव्य क्रोध कहते हैं। वह द्रव्य क्रोध दो प्रकार का है, कर्म द्रव्य और नो कर्म द्रव्य, यानी कर्म द्रव्य क्रोध और नो कर्म द्रव्य क्रोध। क्रोध के दो प्रकार है ना, हाँ नहीं आए। देखो क्रोध पहले क्रोध के दो प्रकार, एक द्रव्य क्रोध और भाव क्रोध, बरोबर। अब द्रव्य क्रोध के दो प्रकार, कर्म द्रव्य क्रोध और नो कर्म द्रव्य क्रोध। अब कहते कर्म द्रव्य, कर्म द्रव्य ने क्रोध नाम का कर्म, बंध उदय और सत्व के भेद से तीन प्रकार का है। द्रव्य क्रोध का बंध होता है, उसका उदय भी होता है और वो सत्ता में भी पड़ा रहता है, तो उस अपेक्षा से उसके तीन भेद बताएं। और क्रोध के निमित्त भूत जिस नौ कर्म द्रव्य ने नैगम नय के अभिप्राय से क्रोध संज्ञा प्राप्त की है, वह दो प्रकार का है। क्या कहते हैं? अभी नौ कर्म द्रव्य जो कर्म नहीं है, अन्य ऐसी जो वस्तुएं हैं, देखो कर्मकांड में ऐसी बात आती है, प्रत्येक कर्म का एक एक नौ कर्म, एक एक यानी अन्य अन्य नौ कर्म बताए जाते हैं। जैसे ज्ञानावरण का उदय है या क्षोभ समय जो कुछ है वो तो कर्म में घटित हुआ। अब ज्ञानावरण का नौ कर्म किसे कहेंगे? ये हमारे शरीर मन वाणी को नौ कर्म बताते, उसकी बात यहाँ नहीं है। कर्मों के नौ कर्म, तो ज्ञानावरण का नौ कर्म जैसे बाह्य ऐसी वस्तु है जिसके कारण ज्ञान की हीनता पाई जाती है, जैसे इंजेक्शन दिया, एनेस्थेसिया दिया या कोई मॉर्फिया का इंजेक्शन दिया या अन्य जो कोई है, वो क्या है उसका, वो कर्म का एजेंट, मैं तो मेरी भाषा में एजेंट कहती हूँ, कर्म का एजेंट है, तो उस पर भी आरोप आता है, तो उसको नौ कर्म द्रव्य क्रोध कहते हैं। जैसे साता असाता वेदनीय में भी बाह्य जो संयोग है वो तो सुख दुख में बाह्य संयोग कुछ नहीं करते, परंतु साता असाता का उदय और वो भी मोहनीय के साथ हो तो संयोगों पर ही वो आरोप आता है कि ये सुख दुख का कारण है, उसके निमित्त है। तो साता का उदय इंद्रिय जनित सुख में जो निमित्त भूत होता है, तो वो साता का उदय भी किस कारण होता है? तो बाह्य में जो कुछ अनुकूलताएं हैं, किसी को पैसे की अनुकूलता है, किसी को शारीरिक स्वास्थ्य की अनुकूलता है, किसी को अभी पंखा एसी का सुख मिल रहा है उसको मान रहे हैं ना, तो उन संयोगों को भी वो कर्म के नौ कर्म कहने में आते हैं। ऐसे यहाँ क्रोध कर्म का उदय और जीव का क्रोध कषाय, इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम कहेंगे क्रोध कर्म का उदय है और यहाँ जीव क्रोध कर रहा है, परंतु हम तो देखते हैं कि बाह्य में कोई पड़ोसी है तकलीफ देता है, कोई नौकर है बराबर काम नहीं कर रहा है या कुछ बिगाड़ दिया है, तो हमें तो वो क्या हुआ, वो नौ कर्म हुआ, क्रोध कर्म का ये नौ कर्म हुआ, तो उसको नौ कर्म द्रव्य क्रोध कहेंगे। निमित्त का निमित्त, या जो निमित्त जो है कर्म जो निमित्त रूप है उसमें जो सहायभूत अन्य वस्तु, ये सामने वाली संयोग में हम देखते हैं, तो फिर संयोग में फिर उसके सचित्त अचित्त भी भेद बताएंगे। देखो हम यहाँ पढ़ते फिर, क्रोध के निमित्त भूत जिस नौ कर्म द्रव्य ने नैगम नय के अभिप्राय से, नैगम नय से उसको भी हम नौ कर्म द्रव्य क्रोध कहेंगे। अभिप्राय से क्रोध संज्ञा प्राप्त की है उसको भी क्रोध कहा है। देखो ऐसी ही स्टाइल या ऐसी ही पद्धति हमने वो इंद्रिय के बारे में देखे, जितेंद्रिय वाली जो गाथा है ना समय सार में, एक तो भावेंद्रिया भी होती है, द्रवेंद्रिया भी होती है, और द्रवेंद्रियों या ये इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ जो है ज्ञेय है उसको भी वहां इंद्रिय कहा था। वैसे यहाँ क्रोध भाव है अपना, क्रोध कर्म का उदय वह भी क्रोध है, द्रव्य क्रोध है, और उसमें निमित्त जो अन्य बाह्य वस्तुएं हैं उसको भी यहाँ क्रोध कहा, उसको कौन सा क्रोध कहेंगे? तो नौ कर्म द्रव्य क्रोध। हाँ नहीं, 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 नौ कर्म द्रव्य ने ऐसी संज्ञा प्राप्त की है या जिसको हमने कहा है, ऐसा वो वाक्य रचना बदल जाएगी। अब ये जो नौ कर्म द्रव्य क्रोध है वो दो प्रकार का है, कौन सा? सचित और अचित। ये सब क्रोध कषाय जिस जीव के होते हैं वह क्रोध कषाय है, यानी जिस जीव को क्रोध कषाय है उसको हम कहेंगे क्रोध कषाय जीव। प्रस्तुत सूत्र में यह बात पूछी गई है कि विवक्षित क्रोध कषाय कैसे अर्थात किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार शेष कषायों का भी कथन करना चाहिए, क्योंकि क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय सबको अलग अलग गिनकर ये क्यों होता है या कैसे होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। अविवक्षित कषायों का निवारण करके कषायों का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र आया है। देखो, विवक्षित या अविवक्षित, यानी विवक्षित यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हम विवक्षित कहते हैं, और उसको छोड़कर जो अन्य होते हैं उसको अविवक्षित कहते हैं। तभी क्रोध कषाय की बात होगी तो क्रोध कर्म का ही उदय कहेंगे, वो हमारा विवक्षित हुआ। तब बाकी जो है अविवक्षित, उसका निराकरण हुआ, उसके यहाँ बात नहीं, उसको रूल आउट कर दिया। तो अगले सूत्र में इसका उत्तर अभी बताते हैं। चरित्र मोहनीयस्य कम्मस्य उदयेन, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जीव क्रोध कषायी आदि होता है। आदि में चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जीव क्रोध कषायी होता है, मान कषायी होता है, माया कषायी होता है, लोभ कषायी होता है। अब फिर पूछेंगे चारित्र मोहनीय में तो कितने प्रकृतियां हैं? 25। फिर भी इसमें क्रोध वाली ही लेना ख्याल है ना, परंतु ये सामान्य कथन है। पहले भी ऐसे कथन आए थे वेद के प्रकरण में भी, उन्होंने बता दिया कि चारित्र मोहनीय के उदय से होते हैं, परंतु उसमें भी सामान्य में ही वो विशेष गर्भित है। वहां भी हमने ये अर्थ लगाया कि स्त्री वेद जो कर्म है मोहनीय का, चारित्र मोहनीय का, उसके उदय में स्त्री वेद होता है। वैसे यहाँ भी लिख तो दिया है चारित्र मोहनीय, ये तो सामान्य कथन कर दिया है, उसी में विशेष उसके अंतर्गत है। नीचे लिखते देखो, सामान्य से निर्देश किए जाने पर भी, निर्देश यानी कथन, यानी सामान्य से बात बताई है कि चारित्र मोहनीय के उदय में क्रोध कषाई होता है, ऐसा अगर बताया है, फिर भी यहाँ विशेष की उपलब्धि हो जाती है, यानी विशेष इसमें से जाना जा सकता है, क्योंकि सामान्य निर्देश विशेषों में भी घटित होते हैं। इसके उदाहरण हमने बहुत बार देखे थे, कर्म की स्थिति कितनी उत्कृष्ट है तो 70 कोड़ा कोड़ी, ये तो सामान्य कथन है। परंतु विशेष की अपेक्षा कहेंगे हम तो जो मिथ्यात्व नाम का दर्शन मोहनीय कर्म है उसकी स्थिति बताते हैं, ऐसा न्याय है। अतः क्रोध कषाय के उदय से क्रोध कषायी, मान कषाय के उदय से मान कषायी, माया कषाय के उदय से माया कषायी और लोभ कषाय के उदय से लोभ कषाय होता है, यह बात सिद्ध हो जाती है। अब अकषायी नाम कदंबवदी, जीव अकषायी किस कारण से होता है, यहां भी प्रश्न चिन्ह लगाना। तो कहते हैं पूर्वोक्त कषायों में से किस कषाय के अभाव से जीव अकषायी होता है, यह बात यहां पूछी गई है। प्रश्न क्यों पूछा है, कौन से कषाय के अभाव से होगा या कौन से कर्म के अभाव में होगा? तो विवक्षित अकषायी के ग्रहण कराने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, उवसमियाए खैयाए लद्धिये। जैसे हमने वेद के प्रकरण भी में उसमें भी देखा था कि उपशम से या क्षय से, ये जो उपशम भाव जो है ना या उपशम अवस्था जो है वो तो मात्र मोहनी में ही घटित होती है। उपशम लब्धि जिसको कहते हैं, ये साधारण वो क्षोपशम में जो सदवस्था रूप उपशम है उसकी बात नहीं, वो तो अन्य में भी घटित होती है, अन्य घाती कर्मों में। परंतु यहाँ उपशम भाव जिस कारण से उत्पन्न होता है, जैसे हम उपशम सम्यक और उपशम चारित्र कहते हैं, अब यहाँ जो अकषाय भाव है, कषायों का उदय मिटना, तो वो किस कारण से हो सकता है? या तो वहां कर्मों का उपशम है चारित्र मोहनीय का, या तो क्षय है, तो उसी को कहते उपशम लब्धि से या क्षायिक लब्धि से। नीचे उसका अर्थ लिखा है देखो, औपशमिक व क्षायिक लब्धि से जीव अकषायी होता है। चारित्र मोहनीय के उपशम से और क्षय से जो लब्धि उत्पन्न होती है, देखो ये जो सारे परिणाम है उसी को लब्धि कहा है। और हम तो सारी अपनी लब्धि किसमें गिनते हैं रोजाना है? ना ना, अभी मार्च महीना है ना, पूरे वर्ष भर की लब्धि हम गिनाएंगे पर अपनी सच्ची लब्धि गिनाने के लिए हमको टाइम नहीं है। तो चारित्र मुनि के उपशम से और क्षय से जो लब्धि उत्पन्न होती है उसी से अकषायपना उत्पन्न होता है। शेष कर्मों के क्षय व उपशम से अकषायपना उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसमें निमित्तपना बनता ही नहीं है। यानी ज्ञानावरण का कुछ क्षय हो गया इसलिए अकषायपना हो गया, ऐसा नहीं है। मुनि के क्षय से ही वहां होगा, क्योंकि उस जीव के तत्प्रायोग्य औषमिक या क्षायिक लब्धियां उत्पन्न नहीं होती। अब जो जिसे औषमिक सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है या क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है, क्या वह जीव अकषाय है? नहीं, क्योंकि उसकी जो लब्धि है वो तो सम्यक्त्व संबंधी है, उसको तो सम्यक्त्व की लब्धि है, या तो औषमिक या क्षायिक। परंतु यहां बात चल रही है कषायों की। जो कषाय संबंधी जो कर्म है, जिसको हम कषाय कर्म कहते, क्रोध कर्म, मान कर्म आदि, यानी चारित्र मुनि कर्म, उसके उपशम या क्षय से ही वहां ये जीव अकषायी हो जाएगा। ये तो इतनी बात है, कषायी और अकषायी क्यों होते हैं। अब ज्ञान मार्गणा की बात करेंगे। तो जैसे हमने कषाय में देखा था ना, कोई जीव कषाय है और कोई अकषाय है, वैसे दीपेश भाई कोई ज्ञान वाले और कोई बिना ज्ञान वाले जीव होगे कि नहीं होगे? नहीं होगे। क्योंकि ज्ञान तो स्वभाव है, उससे रहित कोई जीव नहीं हो सकता, त्रिकाल में नहीं हो सकता। ज्ञान भले कितना ही हीन क्यों ना हो जाए, निगोद अवस्था भी क्यों ना प्राप्त हो जाए, जिसमें मिनिमम ज्ञान प्रकट है, फिर भी वहां ज्ञान की पर्याय जानने रूप कार्य हर समय चल रहा है। कितना जाने उसकी बात नहीं, जानना 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 जानना, ये तो स्वभाव है, वो कभी रुकता नहीं है। तो ये ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा भी जीवों के भेद कहेंगे। ज्ञान मार्गणा में प्रकट ज्ञान जो है, पर्याय में जो कौन सा ज्ञान प्रकट है, उसकी अपेक्षा से इन जीवों के हम भेद बताएंगे। तो कहते नानानुवादेन मदी अन्नानी, पहले अज्ञानियों की बात है, मति अज्ञानी, सुद अन्नानी, विभंग नानी, जो कु अवधि ज्ञान है उसको विभंग ज्ञान कहते हैं। आभिनिभोय नानी, जो सुमति ज्ञान है, सम्यक दृष्टि के मति ज्ञान को आभिनिबोधिक कहते हैं। सुद नानी, ऊपर सुद अन्नानी कहा था, यानी श्रुत अज्ञानी, और यहाँ श्रुत ज्ञानी कह रहे। ओही नानी यानी अवधि ज्ञानी, मनपज्जव नानी नाम कदम भवदी। देखो यहाँ केवल ज्ञान को नहीं लिया है, क्योंकि इन सारों को ही कैसे होता है तो कहेंगे वो क्षोपम से होता है। केवल ज्ञान को हम कहेंगे वो तो क्षायिक से होता है, क्षायिक लब्धि से होता है कहेंगे। एक कदम भवदी के आगे यहाँ प्रश्न चिन्ह लिखना, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे उसी सूत्र का अर्थ लिखते हैं। देखिए, ज्ञान मार्गणानुसार जीव मत्य ज्ञानी, मति प्लस अज्ञानी, हाँ ये एक साथ लिखना है, तो मत्य कहा, ई प्लस अ हो गया ना, ये लगता है, मत्य ज्ञानी। फिर क्या लिखा, श्रुता ज्ञानी, यानी श्रुत प्लस अज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और मनपर्य ज्ञानी, किस कारण से होता है? ये तो प्रश्न पूछा है, अब प्रश्न को ही यहाँ पहले समझाएंगे। इनमें से प्रथम मति अज्ञान का कथन करते हैं। मत्य ज्ञान का कारण दो प्रकार का है। ये जो मति अज्ञान है उसके दो कारण, द्रव्य कारण और भाव कारण। जैसे वहां भी हमने क्रोध में भी देखा था, यहाँ कारणों की बात चल रही है। उनमें से द्रव्य कारण, मति अज्ञान का निमित्तभूत द्रव्य है, वह कर्म और नौकर्म के भेद से दो प्रकार का है। कर्म द्रव्य कारण तीन प्रकार का है, जैसे हमने वहां क्रोध पर घटाया था वैसे यहां भी भेद कर रहे। बंध कर्म द्रव्य, उदय कर्म द्रव्य और सत्व कर्म द्रव्य, यानी जो मति ज्ञानावरण का जो है या मति अज्ञान जो है, उस संबंधी जो कर्म है उसका बंद उदय और सत्ता में पड़े रहना, ये तीन प्रकार हो गए। अथवा यह कर्म द्रव्य अवग्रहावरण, क्या कहा, मति ज्ञान के कौन कौन से भेद है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो अवग्रहावरण, ईहावरण, अवायावरण, धारणावरण, ऐसा कहेंगे अभी। तो यह द्रव्य कर्म अवग्रहावरण आदि के भेद से अनेक प्रकार का है, जितने प्रकार के ज्ञान उतने प्रकार के उसमें भेद कहेंगे कर्मों के। मति ज्ञान के भेद हमने विस्तार से देखे 336। हाँ, तो मति ज्ञान में पहले में पहले पांच इंद्रिया और मन के निमित्त से, यानी छह भेद तो वहां हो गए, है ना, याद है ना। और ये चार चार हमने देखे थे 24, और उसमें विषयों की अपेक्षा 12 प्रकार, तो ये सब भेद हुए। और ये अवग्रह में कोई एक्स्ट्रा पड़ते ना, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह, चक्षु और मन को छोड़कर अन्य में जो है वो व्यंजनावग्रह भी उसमें होता है, तो उसकी भी बात वहाँ, और उसमें ज़्यादा 4x12x ऐसी बातें वहाँ होगी। अब कहते हैं नौकर्म द्रव्य तीन प्रकार का है। नौकर्म ने देखो मति आवरण, ये तो कर्म का नाम हुआ। अब ये नौकर्म ने बाह्य अन्य बातें जो ज्ञान की हीनाधिकता में निमित्त है, ऐसी बाह्य अन्य बातें आवरण में ही निमित्त है, ऐसी ले लेंगे हम। तो कहते सचित्त नौकर्म द्रव्य, अचित्त नौकर्म द्रव्य और मिश्र नौकर्म द्रव्य, इन द्रव्यों की जो मति अज्ञान को उत्पन्न करने वाली शक्ति है वह भाव कारण है। कारण में दोनों को लिया है, उसमें जो शक्ति है वो भाव कारण बताया। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया एनेस्थेसिया, हम क्यों लगता है ना एनेस्थेसिया दीदी अभी ज्ञान कम हो गया, कैसे आपको ये क्या लगता है, वो तो कुछ कर्म नहीं हमारा, प्रश्न तो हमें ऐसे लगते ना, फिर भी ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में आता है। अन्य जो बातें हैं जो अज्ञान में निमित्त वाली अन्य बातें, उसकी बात यहाँ की है। इन सब कारणों से जो मति अज्ञान होता है वह जिस जीव के पाए जाता है वह मति अज्ञानी होता है। पहले कारणों की चर्चा की, उसमें से द्रव्य कारण और भाव कारण कहा, द्रव्य कारण में कर्म द्रव्य कारण और नौ कर्म द्रव्य कारण कहा, और उन कर्म नौ कर्म में जो शक्ति है उसको भाव कारण कहा। अब ऐसा अज्ञान, मति अज्ञान जिस जीव के पाया जाता है उसको मति अज्ञानी कहा। वह कैसे अर्थात किस प्रकार से होता है यह यहाँ यह कहा गया है। नहीं, मति अज्ञान का आवरण वाला ऐसा लेना, मिथ्यात्व तो अन्य चीज है ना, वो मिथ्यात्व कर्म है, वो जीव के मिथ्यात्व भाव में निमित्त है, मिथ्या दर्शन में निमित्त है, वो दर्शन पर घटाना, श्रद्धा पर घटाना। परंतु ज्ञान की स्वयं भी मिथ्या ज्ञान या अवस्था चल रही है कि नहीं चल रही है, तो उसमें निमित्त भूत कौन है, तो वो ज्ञानावरण का विशिष्ट ज्ञान, जैसे हम वहां भी ऐसा भी कहेंगे स्वानुभूत्यावरण का उदय चल रहा है, अपनी अनुभूति नहीं हो रही है, उस संबंधी आवरण कर्म का चल रहा है उदय। ये स्वानुभूत्यावरण की बात इसमें आई थी पंचाध्याय में, बहुत बार आई थी। इसी प्रकार शेष ज्ञानों के विषय में भी कहना चाहिए। यहां शंकाकार कहता है कि अब इसी प्रश्न पर ही शंका चल रही है, अज्ञान ऐसा कहने पर क्या ज्ञान का अभाव ग्रहण किया है या ज्ञान का अभाव ग्रहण नहीं किया, ये अंतर कहा है, परंतु ऊपर क्या है, एत चौदो बना दी अन्नानदी उत्ते किम नानस अभाव घेपदी आहो न घेपदी ती। एक ज्ञान का अभाव ग्रहण करना है या नहीं करना है। पहले भी हमने देखा था ना, अज्ञानी कहने पर, जैसे जीव को छोड़कर अन्य जीव अज्ञानी है, ज्ञान का अभाव है, उसको भी अज्ञान कहते हैं। जो मिथ्या ज्ञान है उसको भी अज्ञान कहते हैं, और केवल ज्ञान की अपेक्षा जो छद्मस्थ का ज्ञान है, क्षोभसम ज्ञान, उसको भी अज्ञान कहते हैं। तो यहाँ शंकाकार पूछ रहा है, अज्ञान ऐसा कहने पर ज्ञान का अभाव ग्रहण करना है कि अभाव नहीं ग्रहण करना है? अभाव, अंतर की जगह अभाव लिखे तो अच्छा है, पेंसिल से लिखो तो अच्छा है। अब प्रथम पक्ष तो बन नहीं सकता, यानी ज्ञान का अभाव तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि मति ज्ञान का अभाव मानने पर, चूंकि मति पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान के भी अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। यानी जिसके मति ज्ञान है उसको श्रुत ज्ञान भी नहीं होगा, तो मति श्रुत ज्ञान दोनों का ही अभाव होगा। और ऐसा माना भी जा नहीं सकता, क्योंकि मति और श्रुत दोनों ज्ञानों के अभाव में सभी ज्ञानों के अभाव का प्रसंग आता है। जिसके मति श्रुत ज्ञान भी नहीं है, हाँ, तो उसके अभाव पूर्वक जो होने वाला केवल ज्ञान वगैरह वो भी नहीं रहेगा, ऐसा कहते। ज्ञान के अभाव में दर्शन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन इन दोनों का परस्पर अविनाभावी संबंध है। जहां ज्ञान है वहां दर्शन भी है, जहां दर्शन भी वहां ज्ञान भी है, इसलिए ज्ञान रहित हो तो दर्शन रहित भी हो जाएगा। तथा ज्ञान और दर्शन के अभाव में जीव भी नहीं रहता, क्योंकि वो तो लक्षण ही है उसका, क्योंकि जीव का तो ज्ञान और दर्शन यही लक्षण है। तो ये प्रथम जो पक्ष था कि ज्ञान का अभाव मानना कि नहीं मानना, तो वो रूल आउट करने शंकाकार ने स्वयं ही पक्ष उठाया और उसको रूल आउट किया। अब जो दूसरा पक्ष है वो भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि अज्ञान कहने पर ज्ञान का अभाव न माना जाए तो फिर प्रतिषेध के फलाभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। फलाभाव ने फल का अभाव, प्रतिषेध ने जो निषेध किया था उसका फल क्या है? ज्ञान का अभाव होना चाहिए था। यदि ज्ञान का अभाव नहीं है ऐसा मानेंगे तो फिर वो निषेध करने का कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा। ये शंका का परिहार अब करेंगे, समाधान। इस शंका का परिहार कहते हैं, प्रथम पक्ष में कहे गए दोषों की प्रस्तुत में संभावना नहीं है, उसकी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रसज्ज प्रतिषेध से अर्थात अभाव मात्र प्रयोजन नहीं है। यहाँ टोटल अभाव की तो बात है ही नहीं है, उसको प्रसज्ज प्रतिषेध कहा, यानी पूर्ण अभाव की बात है, वो तो यहाँ है ही नहीं है। दूसरे पक्ष में कहा गया दोष भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ जो अज्ञान शब्द से ज्ञान का प्रतिषेध किया गया है उसकी आत्मा को छोड़ योग्य सन्निकर्ष रूप स्थान में स्थित समस्त द्रव्यों में स्व पर विवेक के अभाव रूप सफलता पाई जाती है। यहाँ जो ज्ञान का निषेध किया है वो कौन से ज्ञान का निषेध किया गया है? तो कहते हैं ये जो अन्य पदार्थ है, गेय रूप अन्य पदार्थ, आत्मा को छोड़कर जो अन्य है उसमें और अपने में, यानी स्व में और पर में, स्व पर विवेक के अभाव रूप सफलता पाई जाती है। यहाँ ज्ञान का अभाव कहने से कौन सा फल हुआ, क्या रिजल्ट आया? कि वहाँ स्व और पर का विवेक नहीं है, यह रिजल्ट आया। तो उस स्व पर विवेक वाले ज्ञान के अभाव की सिद्धि हो जाती है। जब यहाँ अज्ञान कहा, मति अज्ञान कहा, मति अज्ञान कहने का प्रयोजन क्या है? क्या ये पेन को नहीं जान रहा है? अरे हमारे साइंटिस्ट तो वो चांद तक जाके है, क्या वो ज्ञान नहीं उनके? परंतु उनके स्व और पर का विवेक नहीं है। स्व और पर के विवेक वाला ज्ञान नहीं है तो उनके मति ज्ञान को मति अज्ञान कहने में आता है। ये तो श्रद्धा की ओर से बताना वो तो बात नहीं, ज्ञान में ही जो स्व पर शक्ति है ज्ञान में, तो वहाँ स्व और पर का विवेक भी होना चाहिए, वो इसमें है नहीं है, इसलिए वहाँ ज्ञान का अभाव कहा। यानी सम्यक ज्ञान का अभाव हुआ, है ना। सम्यक ज्ञान क्या है? स्व और पर को, स्व को स्वरूप से, पर को पर रूप से जानता है। अब इसके स्व का तो कोई ज्ञान का ठिकाना ही नहीं है, स्व और पर का विवेक ही नहीं है, तो ये विवेक का अभाव बताता है। यहाँ अज्ञान शब्द क्या बताता है? स्व पर के विवेक का अभाव है ऐसा बताता है। अर्थात स्व पर विवेक से रहित जो पदार्थ का ज्ञान होता है, या पदार्थ ज्ञान होता है, पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे यहाँ अज्ञान कहा है। देखो स्पष्ट शब्दों में बता दिया, ये पदार्थ को जानता नहीं की बात नहीं है। ये तो हम तो इतने होशियार हैं आज के लोग, कौन सा 21वीं सदी चल रही है, तो क्या हम जानते नहीं है? स्व पर के विवेक सहित नहीं जानते, इसलिए उस सब को अज्ञान कहा। 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ने वाला तो ज्ञानी है ना, स्व पर के विवेक सहित होगा तो ज्ञानी है, कितना पढ़ता है उसकी बात नहीं है। शंका, तो यहाँ सम्यक दृष्टि के ज्ञान का भी प्रतिषेध क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि विधि और प्रतिषेध रूप भाव से मिथ्या दृष्टि ज्ञान और सम्यक दृष्टि ज्ञान में कोई विशेषता नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है, वो भी जानता है और ये भी जानता है, तो उसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं है, तो उसका भी यहाँ निषेध क्यों नहीं हो रहा है? उसके भी ज्ञान का अभाव क्यों नहीं कहा, ऐसा प्रश्न है। विधि और प्रतिषेध यानी वो अस्थि और नास्ति या रूल आउट करना, प्रतिषेध यानी उसका अभाव और विधि यानी उसकी अस्थि, समाधान। यहाँ अन्य पदार्थों में परत्व बुद्धि के अतिरिक्त पदार्थ सामान्य की अपेक्षा प्रतिषेध नहीं किया गया है कि जिससे कि सम्यक दृष्टि के भी प्रतिषेध हो जाएं। यहाँ क्या किसका निषेध है? पर में परत्व बुद्धि होनी चाहिए, वो मिथ्या ज्ञान में नहीं है, स्व और पर का विवेक नहीं है, इतने मात्र से इतना ही निषेध है। यह सम्यक दृष्टि के ज्ञान का निषेध नहीं है, किंतु अपने द्वारा ज्ञात वस्तु में विपरीत श्रद्धा उत्पन्न कराने वाले मिथ्यात्वोदय के बल से, ये बात आ गई यहाँ आई ना, विपरीत श्रद्धा उत्पन्न कराने वाले, ये श्रद्धा कौन उत्पन्न कर रहे? मिथ्यात्व का उदय। मिथ्यात्वोदय के बल से जिस पदार्थ के विषय में जीव में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होता, उस पदार्थ के विषय में जो ज्ञान होता है वह अज्ञान कहलाता है, क्योंकि उसमें ज्ञान का फल नहीं पाया जाता। फिर से देखो क्या कहते हैं, अपने द्वारा ज्ञात वस्तुओं में, सम्यक दृष्टि ने भी वस्तु को जाना, किसी वस्तु को, और मिथ्या दृष्टि ने भी जाना, तो इस ज्ञात वस्तु में विपरीत श्रद्धा उत्पन्न कराने वाला जो मिथ्यात्व का उदय है, हमने देखा ना ज्ञान को अज्ञान या मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हैं, साथ में मिथ्यात्व का उदय है इसलिए, तो उसके कारण क्या होता है? जिस पदार्थ के विषय में जीव में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होता, श्रद्धा ने सही अभिप्राय, सम्यक श्रद्धा, उसके तो विपरीत श्रद्धा तो है ही, है ना। उस पदार्थ के विषय में जो ज्ञान होता है वह अज्ञान कहलाता है, क्योंकि उसमें ज्ञान का फल नहीं पाया जाता है। ज्ञान का फल तो विवेक करना है ना, स्वपर का भी विवेक वहां जरूरी है। यही देखो ज्ञान का फल क्या है, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, जिसमें कोई विपरीतता, विपरीतता रहित जानना, यह ज्ञान का फल है। तो मिथ्या ज्ञान में कौन कौन सी विपरीतता पड़ी है आपको मालूम है ना? तीन प्रकार की विपरीतता है, हाँ, कारण विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता और स्वरूप विपरीतता। पदार्थ को जो जानता है, स्वरूप विपरीतता है ना, स्वपर का भी उसमें भेद नहीं है, कारण विपरीतता, उसके कारण के बारे में जो कुछ उसके विपरीतता चल रही है, और भेदाभेद विपरीतता, ये सारी विपरीतता वो मिथ्या ज्ञान में चल रही है, इसलिए उसका जो फल मिलना चाहिए सही ज्ञान, वो उसको नहीं हो रहा। शंका, ये अपनी शंका ही वो शंकाकार के मुंह में बता रहे। क्या घट पट स्तंभ, ये तो फॉर एग्जाम्पल दो तीन चीजें लिए। घट यानी जो कुछ वस्तु है, वो मिट्टी का घड़ा जिसको घट कहते हैं, पट यानी वस्त्र, स्तंभ यानी खम्भे, पिलो पिलर। अभी जो कुछ अन्य चीजें हैं अपनी जो देखने में आती है, अन्य सभी चीजें देखिए हम आदि पदार्थों में मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान अनुसार श्रद्धान पाया तो जाता है, वो भी पट को पट ही कहता है, वस्त्र को वस्त्र ही कहता है, और वस्त्र के बारे में तो वो बहुत कुछ जानता है हा? वो किस मटेरियल से बना है, कितने काल टिकेगा, उसका क्या यूज हो सकता है, सब कुछ जानता है। तो कहते हैं नहीं, यानी ज्ञान के अनुसार श्रद्धा नहीं है उसके। क्यों? उस जीव के उस ज्ञान में भी अध्यवसाय अर्थात अनिश्चय देखा जाता है, अनध्यवसाय अर्थात अनिश्चय। निश्चय ने ऐसा ही है ये निश्चय, और जो नहीं है उसको कहेंगे अनिश्चय है, अनध्यवसाय। और यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि यह ऐसा ही है, ऐसे निश्चय का वहां अभाव होता है, उसी को अनध्यवसाय कहते हैं। और अध्यवसाय ने यह ऐसा ही है, ऐसा जो निश्चय होता है उसको अध्यवसाय कहते हैं। अनध्यवसाय की बात है ना यहाँ, अनध्यवसाय अथवा नहीं नहीं नहीं, ये बात पहले इसमें भी आई अपने वितराग विज्ञान वगैरह में, वहाँ भी वो अनध्यवसाय सही जानकारी उसके लिए वो अध्यवसाय शब्द आया था, और अनध्यवसाय ने ये जो निर्णय रहित ऐसा जो ज्ञान उसको अनध्यवसाय कहते हैं। हाँ, अब ये निर्णय रहित वाले में वो मिथ्या श्रद्धान भी साथ में है ना, तो उसमें एकत्व बुद्धि ऐसा भी अर्थ किया है। वो ये कुछ निर्णय रहित जैसे चलता है, और ये कुछ तो लगा पैर में, निर्णय नहीं हुआ, संशय विपरीत और अनध्यवसाय ऐसा जो वहां कहा है उसकी बात, अनिर्णित ऐसी जो कुछ बात है उसको भी अनध्यवसाय कहते। यहां लिखा ना ऐसा ही है, ऐसे निश्चय का अभाव उसको अनध्यवसाय कहते हैं। अथवा जिस प्रकार दिशा के संबंध में विमूढ़ जीव वर्ण गंध रस और स्पर्श वे जिस प्रकार अवस्थित है, उस प्रकार के ज्ञान का श्रद्धान करता हुआ भी अज्ञानी कहलाता है, क्योंकि इसके जिस दिशा में वे अवस्थित है उस प्रकार के ज्ञान पूर्वक श्रद्धान का अभाव है। कोई चीज उसको दिशा का ज्ञान नहीं है, और किसी चीज के वो स्पर्श रस गंधवर्ण आदि तो उससे संबंध में तो जानता है, परंतु कौन से दिशा में कौन सा पदार्थ स्थित है वो नहीं जानता है। यहाँ लिखा ना जिस दिशा में वे अवस्थित है, कौन स्पर्श रस गंधवर्ण आदि बातें, ये वो ये तो गुणों के द्वारा बताया है, परंतु कोई वस्तु ही है ना, वस्तु में स्पर्श रस गंधवर्ण है, स्पर्श रस गंधवर्ण तो जानता है, परंतु जिस दिशा में वे अवस्थित है उस प्रकार के ज्ञान पूर्वक श्रद्धान का अभाव है। इसी प्रकार स्तंभादि पदार्थों में, जो पहले ऊपर घट पट ये स्तंभ आदि बताए थे, उन पदार्थों में यथा ज्ञान श्रद्धा करता हुआ भी अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि उसके जिन भगवान के वचन में श्रद्धान का अभाव है। एक वाक्य में बता दिया, जिनेन्द्र भगवान के वचन में श्रद्धा नहीं है उसके, यथार्थ वस्तु स्वरूप यथार्थ ज्ञान जिनेन्द्र भगवान के वचन के द्वारा हमें होता है, क्योंकि हम तो अभी परोक्ष ज्ञानी है ना, अन्य विषयों में कुछ नहीं जानते, तो उनके वचन का जो श्रद्धानी है उस सहित जो पदार्थ हमको जानेगा तो उसका ज्ञान सही कहलाएगा। जैसे हम जिनेंद्र भगवान के श्रद्धान के अनुसार उनके वचन के अनुसार कहते हैं क्या ये पुद्गल है, तो ये क्या एक वस्तु है कि अनेक वस्तुएं हैं? ये रबर जो है एक वस्तु है कि अनेक है? द्रव्य कितने इसमें? अनंत। तो अनंत थोड़े हमने गिने हैं, अनंत अनंत परमाणुओं का स्कंद है ये, है ना? तो ये हमने बात कैसी जानी? जिनेंद्र भगवान के वचन के अनुसार जानी, है ना? तो हमारा ये ज्ञान, ये कथन भी हमारी, ये श्रद्धा भी सही है, ऐसा कहेंगे हम। उसकी बात यहां बता रहे। तो ये तो प्रश्न पर ही सारी वहां पोहो या चर्चा चल रही है, और प्रश्न का उत्तर तो अब आएगा। तो वहां तो मति अज्ञानी कैसे होता है ये प्रश्न उठाया था, उसका उत्तर देखते हैं। खो व समियाए लब्धिये, क्षायोपशमिक लब्धि से जीव मति अज्ञानी आदि होता है। ये सारे ही जो क्षोपशम ज्ञान की लिस्ट हमने पढ़ी थी, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और मनपरे ज्ञानी। शंका, मति अज्ञानी जीव के क्षायोपशमिक लब्धि कैसे हो सकती है? ये क्षायोपशमिक लब्धि यानी सामान्य क्षोपशम भाव, ये लब्धि वाला सम्यक दर्शन के पहले वाली क्षायोपशमिक लब्धि नहीं है, क्योंकि मति अज्ञानी तो कोई भी जीव है ना, एक इंद्रिय भी एक मति अज्ञानी है, तो उसको ये क्षोपशम लब्धि वाली लब्धि नहीं है जो हम वहां क्षोपशम से पूर्व देखते, वो अलग बात है। यह क्षोपशम भाव कैसे घटित होता है उसको बताते हैं। समाधान, क्योंकि उस जीव के मत्य ज्ञानावरण, ये मति अज्ञान नाम का जो ज्ञान है उसका आवरण है। तो और मति ज्ञान जो सुमति ज्ञान है उसमें मति ज्ञानावरण कहेंगे, यह मत्य ज्ञानावरण कहा। मत्य ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों के उदय से मत्य ज्ञानीपना पाया जाता है। देशघाती, हाँ ये वो दिख रहा है, वे का दे करना। शंका, यदि देशघाती स्पर्धकों के उदय से अज्ञानीपना होता है तो अज्ञानीपने को अवदयिकपने का प्रसंग प्राप्त होता है। ये जो क्षोपशम हम घटित करते ना, तो यहाँ कहते कि देशघाती का उदय है तो उसको अवदयिक क्यों नहीं कहते? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि उसके सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव है। यह प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए। क्योंकि देशघाती का उदय है परंतु मत्य ज्ञानावरण के सर्वघाती का अनुदय है। हमने देखा था ना, वहाँ उदय का अभाव है वो क्षय कहलाएगा, और वहाँ सत्वोपशम है। तो फिर शंकाकार पूछता है, तो फिर अज्ञानीपने में क्षयोपशमिकता क्या है? अज्ञानीपना में क्षयोपशम कैसे घटित करते हैं? तो उसका समाधान, आवरण के रहते हुए भी आवरणीय ज्ञान का एक देश जहाँ पर उदय में पाया जाता है उसी भाव को क्षयोपशमिक नाम दिया गया है। यानी आवरण भी है और उस संबंध वाला ज्ञान है, उसका उगाड़ भी है, परंतु आवरण कैसा है? जो पूरे रूप से ढक नहीं, पूर्ण रूप से ढक देगा तो हम उसको सर्वघाती कहेंगे। ऐसा आवरण है, आवरण भी है और ज्ञान भी है, ज्ञान का उगाड़ भी है और उस पर आवरण भी है। तो आवरण के रहते हुए भी आवरणीय ज्ञान, यानी अभी हम मत्या ज्ञानावरण की बात, मत्य ज्ञान की बात, मत्य अज्ञान की बात चलती ना, मत्य अज्ञान, मत्य ज्ञान, तो मत्य ज्ञानावरण का रहते हुए भी आवरणीय ज्ञान यानी मत्य ज्ञान, मत्य अज्ञान उसका एक देश यानी उसका पार्ट थोड़ा जहां पर उदय में पाया जाता है, उसी भाव को क्षावश्रमिक नाम दिया है, उस ज्ञान को क्षावश्रमिक ज्ञान कहेंगे।
यहाँ आवरणीय का अर्थ जो आवरित हुआ है, जो ढका हुआ है। अभी अपनी बात तो मति ज्ञान की चल रही है, इसलिए उसको मति अज्ञान जो है उसके लिए वो आवरणीय आवरीय शब्द आया, आवरणीय
आवरणीय
यानी जो आवरित हुआ है, यानी जो जिसके ऊपर आवरण आया है, वो कॉमन शब्द है। अभी अपना विषय तो मति अज्ञान का चल रहा है,
इसलिए अज्ञान को क्षावश्रमिकपना विरोध को प्राप्त नहीं आता, यानी जो अज्ञान है मति अज्ञान है उसमें भी क्षावश्रमिक भाव घटित होता है। अथवा ज्ञान के विनाश का नाम क्षय है, उस क्षय को उपशम का नाम एक देश क्षय है, उसकी क्षोभशम संज्ञा है। ऐसा क्षोभशम होने पर जो ज्ञान या अज्ञान उत्पन्न होता है उसी को क्षावश्रमिक लब्धि कहते हैं। यानी क्षोभशम हो जाने पर ज्ञान या अज्ञान जो है, ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान और अज्ञान, ये ज्ञान यानी केवल ज्ञान को छोड़कर अन्य ज्ञानों की बात है, सुमति सुश्रुत अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान, इनके क्षोभशम से एक क्षावश्रमिक लब्धि है, उनका क्षोभशमिक ज्ञान है, वो क्षायोपशमिक ज्ञान है। ये ज्ञान या अज्ञान को यहाँ लब्धि का है, हो नहीं समझे, ये लब्धि है, क्षावश्रमिक लब्धि है, वो जीव का परिणाम है। और क्षयोपशम किस में घटित कर रहे हैं, कर्म में, कर्म में निमित्त में तो क्षयोपशम चल रहा है, उसकी क्षयोपशम अवस्था चल रही है, और उसके निमित्त से यहाँ जो ज्ञान या अज्ञान है जीव के भाव में, उस भाव को क्षयोपशमिक भाव या क्षयोपशमिक लब्धि कहा है। यानी जो सम्यक दृष्टि है उसके भी यहाँ क्षयोपशमिक लब्धि कहेंगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, ये सम्यक तो के पूर्व वाली लब्धि का और इस क्षयोपशम लब्धि का घोटाला नहीं करना। उपलब्धि ने जीव के परिणाम में उसके जो उस भाव की प्रकटता, उसको यहाँ लब्धि कहा है। इसी प्रकार श्रुता ज्ञान यानी श्रुता ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, विभंग ज्ञान, आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान को भी क्षयोपशमिक भाव कहना चाहिए। विशेषता यह है कि इन सब ज्ञानों में अपने अपने आवरणों के, अपना अपना आवरण यानी अवधि ज्ञान के लिए अवधि ज्ञान आवरण, मनपर्य ज्ञान के लिए मनपर्य ज्ञान आवरण, ये अपना अपना आवरण है। अपने अपने आवरणों के देशघाती स्पर्धकों के उदय से क्षावश्रमिक लब्धि होती है, ऐसा कहना चाहिए। एक क्षावश्रम में हम घटित करते हैं ना, सर्वघाती का उदय का अभाव, वो सप्तोपशम और देशघाती का उदय, उससे वो क्षावश्रमिक भाव प्रकट होता है।
देखिए यहाँ पर जो विभंग ज्ञान कहा गया है वह कु अवधि ज्ञान का दूसरा नाम विभंग ज्ञान है, और यहाँ पर पहले मत्य ज्ञान लिखा है यानी वो मति अज्ञान है, और यहाँ आभिनिबोधिक ज्ञान जो है वो सुमति यानी मति ज्ञान को ये नाम है।
तो शंकाकार पूछता है, इन सातों ज्ञानों के साथ ही आवरण क्यों नहीं होते, क्योंकि हमने ज्ञान आवरण के तो पांच ही भेद देखे, मति ज्ञान आवरण, श्रुति ज्ञान आवरण आदि, तो ये सात नाम क्यों नहीं दिए। तो उसका समाधान, नहीं होते क्योंकि पांच ज्ञानों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान नहीं पाए जाते, किंतु इससे मत्य ज्ञान यानी मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान का अभाव भी नहीं होता, क्योंकि उनका यथाक्रम से आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान में अंतर्भाव हो जाता है। खाली कु और सु का डिफरेंस है ना, वहां उसी में वो गर्भित हो जाते हैं, तो सबको मिलकर मति ज्ञान और मति ज्ञान आवरण ऐसा ही कहेंगे। अब कहते शंका, पहले इंद्रिय मार्गणा और योग मार्गणा में सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से उन्हीं स्पर्धकों के सत्वोपशम से तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय से क्षायोपशमिक करना यह हुआ है। क्षायोपशमिक भाव की प्ररूपणा की गई है, किंतु यहाँ पर सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय और उनके सत्वोपशम इन दोनों का प्रतिषेध करके केवल देशघाती स्पर्धकों के उदय से ही क्षयोपशमिक भाव होता है ऐसा प्ररूपण करने वाले स्वव्यचन विरोध दोष क्यों नहीं होता। यहाँ सर्वत्र एक ही बात की, वो उदय का क्षय वगैरह वो बात यहाँ नहीं लिखी है, देशघाती का उदय इतना ही लिखा है। तो कहते फिर ये क्षयोपशम कैसे घटित होगा, स्वविचन विरोध यानी पहले आपने ही बात की थी और आप ही यहाँ पर उसको नहीं लिख रहे, तो ये अपने ही वचन का विरोध हो गया। तो उसका समाधान नहीं, क्योंकि यदि सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से संयुक्त ऐसा जो देशघाती स्पर्धकों का उदय उससे ही क्षयोपशमिक भाव मानना इष्ट हो तो स्पर्शनेन्द्रिय काय योग मति ज्ञान तथा श्रुत ज्ञान इनके क्षयोपशमिक भाव प्राप्त नहीं होता, क्योंकि स्पर्शनेन्द्रियावरण वीर्यांतराय कौमा देना मति ज्ञानावरण तथा श्रुत ज्ञानावरण इनके सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का सब काल में अभाव होता है, यानी इनका कभी वो तो उदय होगा ही नहीं तो मति ज्ञान पूरा ही मिटेगा, श्रुत ज्ञान पूरा ही मिटेगा, है ना। स्पर्शनेन्द्रिय एक तो इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता ही है, इसलिए स्पर्शनेन्द्रियावरण का सर्वघाती का उदय हो जाए कभी किसी काल में ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए वहाँ उदय का अभाव है ये बताने की जरूरत नहीं ऐसा कहते हैं। तो इसलिए कथन क्या आया, देखो पहले भी हमने जब जब पढ़ा था एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, जहाँ स्पर्शनेन्द्रिय की बात आई थी वहाँ डायरेक्ट बताया था कि देशघाती का उदय, और जहाँ रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय चक्षु इंद्रिय की बात की थी वहाँ वो सर्वघाती देशघाती दोनों को करके समझाया था। है उसमें भी वही बात कि सर्वघाती का उदय का अभाव ही है, परंतु यहाँ कहते हैं कि वो तो कभी उसका उदय होता ही नहीं है, इसलिए उदय का अभाव ये कहने की जरूरत भी नहीं है, सब काल में अभाव है। और इससे स्ववचन में विरोध भी नहीं आता, क्योंकि इंद्रिय मार्गणा और योग मार्गणा में अन्य आचार्यों के व्याख्यान क्रम ज्ञान कराने के लिए वहां वैसा प्ररूपण किया गया है। यानी जो सर्वघाती का उदय का अभाव ये तो क्षोभशम परिभाषा कैसे घटित होती है वो तो बताया, परंतु उससे अगर उसका कथन नहीं भी करेंगे अकेले देशघाती का उदय कहेंगे, क्योंकि स्पर्शनेन्द्रियावरण के संबंध में कभी सर्वघाती का उदय होगा ही नहीं तो उदय का क्षय बताने की आवश्यकता नहीं ऐसा वहां कहना है। वैसे ही मति ज्ञानावरण के बारे में श्रुत ज्ञानावरण के बारे में और ये काय योग के संबंध में भी वही बात उन्होंने की है, वीर्यांतराय के भी बारे में ऐसा ही है। जो जिससे नियमतः उत्पन्न होता है वह उसका कार्य होता है और वह दूसरा उसको उत्पन्न करने वाला कारण होता है, किंतु यह निमित्त में बताना है। क्या कहते हैं यहाँ तो अविनाभाव बताना है ना, कारण और कार्य किससे कहना, किसको कहना, जो नियम से उसका कार्य उसको कार्य कहेंगे और उसी से उत्पन्न होता है तो उसी को कारण कहेंगे। तो फिर इसको पढ़ती है, जो जिससे नियमतः यानी निश्चित ही उत्पन्न होता है वह उसका कार्य है और वह दूसरा उसको उत्पन्न करने वाला कारण होता है, किंतु देशघाती स्पर्धकों के उदय के समान सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय नियम से अपने अपने ज्ञान का उत्पादक नहीं होता। क्या कहते हैं, एक देशघाती का उदय तो वहां ज्ञान का उत्पादक कहा, परंतु सर्वघाती का उदय क्षय वो ज्ञान का उत्पादक नहीं कहा। अभी उसके लिए कुछ दृष्टांत देते हैं, क्योंकि क्षीण कषाय के अंतिम समय में अवधि और मनपरे ज्ञानावरणों के सर्वघाती स्पर्धकों के क्षय से अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान उत्पन्न होते हुए नहीं पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? बारहवें गुणस्थान का अंतिम समय कौन कौन से ज्ञानावरण नष्ट होते हैं? पांचों ही। तो वहां पांचों ही ज्ञानावरण नष्ट होते, तो अवधि ज्ञानावरण नष्ट हो गया है ना। सर्वघाती स्पर्धक थे, उसके सत्ता में पड़े हुए, वो नष्ट हुए, और मनपरे ज्ञानावरण भी नष्ट हो गया। तो क्या उत्पन्न होना चाहिए? हाँ, अभी होना चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पांचों ही ज्ञानावरण नष्ट होते हैं तो केवल ज्ञान ही उत्पन्न होता है, यही बात बताना चाहते हैं। ऐसा लक्षण बांधना चाहते हैं कि जो यूनिवर्सल हो, उसमें कोई फ्लॉ नहीं, गर्भित नहीं है। केवल ज्ञान में गर्भित कहेंगे तो केवल ज्ञान में क्षौपशमिक ज्ञान भी गर्भित है, ऐसा कहना पड़ेगा। केवल ज्ञान तो सब कुछ जानता है, ऐसा कहो, ख्याल है ना। ये गर्भित है ऐसा कथन आता है ना, वो अलग अपेक्षा से। केवल ज्ञानी तो सब कुछ जानते हैं, जो मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनोपरे ज्ञानी जाते, वो सब कुछ जानते हैं। उस अपेक्षा से उसको यहाँ कहा है, वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में भी आया था। केवल ज्ञानी के पास पर्याय ज्ञान है कि नहीं है? करोड़पति के पास एक रुपया है कि नहीं? ऐसे वहां बताई थी वो बात। परंतु क्षोभशम ज्ञान अलग बात है और क्षायिक ज्ञान अलग बात है,
क्योंकि दोनों की क्वालिटी अलग है ना।
क्वालिटी अलग है ना, वो क्रम रहित युगपत सभी को जानते हैं,
और क्षायिक ज्ञान, इसमें महद अंतर है।
फिर भी इनके जो जो ज्ञान के विषय, उससे वो तो सब कुछ जानते, एक साथ जानते हैं इस तरह से। अब कहते हैं, आवाज आवाज, केवल नानी नाम कदम भवदी। जीव केवल ज्ञानी किस कारण होता है? अब यहाँ किस कारण से ने? क्या औदयिक भाव से होगा कि नहीं होगा? औदयिक भाव से केवल ज्ञानी नहीं होगा। औदयिक भाव से तो अभी तक अज्ञानी था, केवल संबंधी अज्ञान था ना। क्या औपशमिक भाव से? जैसे औपशमिक भाव से जीव पूर्ण वितरागी होता है। दीपेश भाई, आपने देखा होगा कि ग्यारहवा गुणस्थान है तो जीव पूर्ण वितरागी है। कैसा? अरिहंत जैसा, सिद्ध जैसा पूर्ण वितरागी है। तो वहां तो औपशमिक भाव है, तो औपशमिक भाव से पूर्ण वितरागी होता है। वैसे औपशमिक भाव से सर्वज्ञ होगा कि नहीं होगा? आप क्या कहते भाई? शरद भाई, आप जरा सोचना। औपशमिक भाव से थोड़े टाइम के लिए, जैसे औपशमिक भाव से एक अंतर्मूर्त के लिए ग्यारहवें गुणस्थान पूर्ण वितरागी है, वैसे एक अंतर्मूर्त के लिए ज्ञानावरण का उपशम हो जाए और जीव सर्वज्ञ हो जाए, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों चला जाएगा या नहीं, वो तो उसने सर्व अंतर्मूर्त में तो सब कुछ जान लिया। हाँ, वही तो उपशम होता ही नहीं है ज्ञानावरण आदि में, तो औपशमिक भाव होता ही नहीं है। हो जावे तो क्या हो जाएगा? अंतर्मूर्त के लिए केवल ज्ञान हो गया। सब कुछ जान लिया अपने शत्रु मित्र सब, तो क्या होगा? अभी आज हम थोड़ा साइंस जानते, थोड़ी कुछ बातें जानते, तो कितना राग द्वेष और कितने कषाय की प्रवृत्ति होती है, और उसने सब कुछ जान लिया। तो देखिए, या औपशमिक भाव से या क्षयोपशमिक, क्या क्षयोपशमिक भाव से? तो क्षयोपशमिक भाव से भी केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो तो सर्वघाती है। क्या पारिणामिक भाव से जीव केवल ज्ञानी होता है? अभी रूल आउट करेंगे। पारिणामिक भाव से तो होता नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सभी जीवों के केवल ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग आ जाता। औदयिक भाव से भी केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान के प्रतिबंधक कर्मोदय से उसकी उत्पत्ति होने में विरोध आता है, केवल ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, है ना, तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। यानी किसी कर्मों के उदय के कारण केवल ज्ञान नहीं हो सकता। औदयिक भाव कब घटित होता है? जैसे हमने क्रोध में देखा, क्रोध का उदय है और यहाँ क्रोध हो रहा है, वैसे ऐसा कोई कर्म है कि जिसका उदय हो जावे और यहाँ केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए, तो उसका उदय कह सकते थे। क्या ले? केवल ज्ञान औपशमिक भी नहीं है, क्योंकि मौन्य के समान ज्ञानावरण का उपशम नहीं होता। कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है ना, मौन्य में ही वो उपशम होता है। मौन्य में दर्शन मौन्य में भी उपशम होता है, जिसको हम औपशमिक सम्यक तो कहते हैं, और चारित्र मौन्य में भी उपशम होता है, जो उपशम श्रेणी में होता है, औपशमिक चारित्र कहते हैं। एक एक भाव क्यों नहीं होता है उसकी बात कह रहे हैं। केवल ज्ञान क्षाउपशमिक भी नहीं है, क्योंकि असहाय और करण क्रम एवं व्यवधान से रहित ज्ञान को, केवल ज्ञान कैसा है? एक तो असहाय है, और कैसा है? करण से रहित यानी इंद्रियों से रहित है, क्रम से रहित है, और व्यवधान यानी कोई ऑब्स्टेकल उसमें उससे भी रहित है। कोई क्षेत्र की दूरी हो या काल का अंतर हो या कोई पदार्थ सूक्ष्म हो, तो उससे कोई ज्ञान में व्यवधान नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई रुकावट नहीं होती उसके। तीनों काल के और समस्त विश्व के पदार्थों को युगपत एक साथ प्रत्यक्ष, यानी जैसे अनंत काल के बाद वाली भी चीज सामने प्रत्यक्ष हो रही है, ऐसा जानते हैं युगपत, जानते हैं ना, ऐसा होगा ऐसा नहीं जान रहे, ऐसे द्वारका को जलती हुई देखा उन्होंने, जलेगी वो, मुनि आएंगे, ऐसा ऐसा क्रम से नहीं। क्रम तो उनके ज्ञान में है, परंतु सारे ही क्रम पूर्वक होने वाले पूरी सभी घटनाओं को युगपत जानते हैं। हम टीवी सीरियल को जानते तो ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे क्रम से जानते हैं ना। आधे घंटे की सीरियल कितने टाइम में जानेंगे? आधे घंटे में। या एक बार देखी हो तो थोड़े उसके कुछ ख्याल आ गया, हाँ ऐसा 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 था, फिर भी वो तो क्रम तो पड़ेगा उसमें। ऐसे ज्ञान को क्षाउपशमिक होने में विरोध आता है। यहाँ शंका होती है कि समस्त ज्ञान केवल ज्ञान ही है, क्योंकि आवरण के दूर हो जाने से अज्ञानों में उसी से निकलने वाले ज्ञान कण पाए जाते हैं, और यह ज्ञान कण केवल ज्ञान से भिन्न नहीं है, क्योंकि जीव में 5 ज्ञानों का अभाव है। यह क्या कहते हैं? केवल ज्ञान जीव का स्वभाव है। जब आवरण हट जाता है तो स्वभाव में से ही ज्ञान प्रकट होता है, और वो केवल ज्ञान प्रकट होता है। कहाँ से आए ज्ञान कण? स्वभाव में से है, तो स्वभाव में कुछ 5 ज्ञान नहीं पड़े हैं, ये शंका करके शंका चल रही। यदि कहा जाए कि जीव में 5 ज्ञानों का अभाव है, यह किस प्रमाण जाना जाता है? तो इसका समाधान कि त्रिकाल गोचर यानी तीनों काल में जो है वो और जो जानने में आ रहे हैं, तो त्रिकाल गोचर समस्त द्रव्यों और उनकी पर्यायों को विषय करने वाला एक केवल ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। केवल ज्ञान कैसे है? त्रिकाल गोचर यानी तीनों कालों का जिनमें ज्ञान है, ऐसा त्रिकाल गोचर। गोचर यानी ज्ञान में आना, जानने की अपेक्षा गोचर कहते हैं। तो त्रिकाल गोचर यानी तीनों कालों को जानने वाले हैं, समस्त द्रव्यों और उनकी पर्यायों को विषय करने वाला है। अशेष ऐसा कहे ना, कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं कि वो जिनके ज्ञान इनके ज्ञान में नहीं आता, और प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को भी वो भिन्न भिन्न भी जानते हैं, और युगपत जानते हैं। युगपत जानते तो सबका खिचड़ी हो जाती है, ऐसी बात नहीं, वो उसका भिन्न 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 ऐसा भी जानते। उनको विषय करने वाला अक्रम भावी युगपत है, वो एक साथ जानते हैं, एट अ टाइम एक समय में जानते हैं, क्रम से होता होगा ऐसी बात नहीं है, उसको कहते हैं अक्रम भावी। इंद्रिय और आलोक आदि साधनों से निरपेक्ष यानी इंद्रिय रूपी जो निमित्त है, साधन है, उससे निरपेक्ष है, इंद्रियों की कोई उन्हें जानने के लिए आवश्यकता नहीं है। आलोक आदि ने प्रकाश आदि, आलोक यानी प्रकाश, हमें जानना है तो पहले हम रात को जानना है कुछ अंधेरा है तो लाइट जलाएंगे पहले, हा? ये पराधीनता है अपने ज्ञानों की, तो उन्हें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आलोक आदि में अन्य अन्य जो कुछ साधनभूत हम इस्तेमाल करते हैं, उन साधनों से निरपेक्ष, उनकी उन्हें कोई अपेक्षा नहीं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। और कैसे पदार्थ, सूक्ष्म, जो सूक्ष्म पदार्थ है जो इंद्रियों के द्वारा या माइक्रोस्कोप में या कैसे भी नहीं पकड़ में आएंगे, ऐसे जो सूक्ष्म पदार्थ है या अरूपी भी द्रव्य है, दूर यानी दूरवर्ती और समीपवर्ती आदि, दूर हो या समीप हो या काल की अपेक्षा अंतरित हो, ऐसा भी आते ना, सूक्ष्म दूरवर्ती और अंतरित, ऐसे तीन शब्द आते हैं। ऊपर क्या लिखा है, सूम दूर समीप आदि, दूर या नजदीक, ऐसा कोई विघ्न नहीं आता उसके ज्ञान में। दूर में क्षेत्र की दूरी और काल की दूरी दोनों समझना, पहले तो त्रिकाल गोचर कह ही दिया उन्होंने। सूक्ष्म दूर और समीपवर्ती आदि विघ्न समूह से मुक्त, यानी उन्हें ये कोई विघ्न नहीं होता, इनसे वे मुक्त है, केवल ज्ञान होता है, ऐसे केवल ज्ञान से व्याप्त समस्त जीव प्रदेशों में। ये केवल ज्ञान कहाँ पर व्याप्त है, समस्त जीव प्रदेशों में, क्रमभावी। अब ये वर्णन किसका आया होगा, जहाँ केवल ज्ञान समस्त जीव प्रदेशों में व्याप्त है, सभी असंख्यात प्रदेशों में केवल ज्ञान व्याप्त है। वो केवल ज्ञान कैसे है, ऐसा ऐसा, अभी हमें इतना महान था उसकी देखिए, ऐसा ऐसा जानने वाला केवल ज्ञान है, ऐसे जीव प्रदेशों में कहते हैं। क्रमभावी, ये किसका वर्णन हो रहा है, हमारे ज्ञान का। क्रमभावी, साधन सापेक्ष, साधन सापेक्ष, अभी हम लोग कितने कितने साधनों की जरूरत पड़ती है वो सब ले लेना, इंद्रियों से भी हमारा काम नहीं चलता, इंद्रियों के आगे और एक एक्स्ट्रा इंद्रिय लगानी पड़ती है चश्मे की। तो साधन सापेक्ष, सप्रतिपक्ष, ये कर्मों का प्रतिपक्ष है ना, प्रतिपक्ष कर्म वहां प्रतिपक्ष है, सप्रतिपक्ष, परिमित यानी लिमिटेड, उनका तो ज्ञान अमर्याद अनंत है और हमारा परिमित है, और अविशद, केवल ज्ञान स्पष्ट है तो हमारा विशद यानी स्पष्ट, हमारा अविशद है, क्षोपशम ज्ञान अविशद है। मति आदि ज्ञानों का अस्तित्व होने में विरोध आता है, अस्तित्व विरोहादो, प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए, ऊपर नहीं है, देखो, सपरिवक्ख परिमीय अविशद नानानम अस्तित्व विरोहादो, क्या कहते हैं, जिन संपूर्ण आत्म प्रदेशों में केवल ज्ञान व्याप्त है, जो क्रम, क्या नहीं, केवल ज्ञान होने पर क्या है, संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में वो केवल ज्ञान की पर्याय चल रही, जो इतना स्पष्ट है, एक साथ जानता है, कोई क्रम नहीं पड़ता है, उसके लिए किस साधनों की जरूरत नहीं, और ऐसे ही जीव के प्रदेशों में यह ऐसा क्रमभावी होगा ज्ञान, उस किसकी सहायता की जरूरत होगी, ये कैसे हो सकता है, क्या नहीं? केवल ज्ञान के साथ अन्य ज्ञान क्यों नहीं है, उसके ये विवेचन चल रहा है, इसलिए उसको मानने में विरोध, अस्तित्व होने में विरोध आता है। और केवल ज्ञान से अवगत पदार्थों में शेष ज्ञानों की प्रवृत्ति भी नहीं होती, केवल ज्ञान से जिन पदार्थों को जाना गया है उसमें अन्य ज्ञानों की प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि विशद और अविशद ज्ञानों की, विशद यानी वो केवल ज्ञान स्पष्ट ज्ञान, और अविशद यानी अस्पष्ट ज्ञान, उन ज्ञानों की एक आत्मा में एक काल में प्रवृत्ति होने में विरोध आता है और जाने हुए पदार्थ को पुनः जानने में कोई फल भी नहीं है। जिसको केवल ज्ञान ने जान लिया है फिर उसको मति ज्ञान के द्वारा क्यों जाने? ऐसे होते ही नहीं, एक साथ दो प्रवृत्ति होगी ना, कि केवल ज्ञान ने तो स्पष्ट जान लिया और मति ज्ञान ने थोड़ा अस्पष्ट जान लिया, तो एक ही साथ स्पष्ट ज्ञान भी है और अस्पष्ट ज्ञान भी है, ऐसा कैसे होगा? ये बात कह रहे हैं। केवल ज्ञान से न जाने हुए पदार्थों में मति आदि ज्ञानों की प्रवृत्ति होती है ऐसा भी नहीं कह सकते। कोई ऐसा कहेगा केवल ज्ञान ने तो कुछ पदार्थ स्पष्ट जान लिए, केवल ज्ञान ने जो नहीं जाना था हाँ तो उसको तो मति ज्ञान ने जान लिया, तो ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि केवल ज्ञान से न जाना गया हो ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है। केवल ज्ञान ने तो सबको जान लिया है, तो उसके ज्ञान से परे ऐसा कोई इस विश्व में पदार्थ ही नहीं है कि जिसको अभी कोई अन्य ज्ञान आकर जाने। इसलिए जीव में पांच ज्ञान नहीं होते, एकमात्र केवल ज्ञान ही होता है। यह प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए, ऊपर भी नहीं है। केवल नाणम एकम चेव, चेव लिखा ना, एक ही ज्ञान होता है। वो विशद में सब आ गए ना, वो तो सारे देखो, स्पष्ट को ही प्रत्यक्ष यहाँ कहा है, परोक्ष में अस्पष्ट को भी परोक्ष कहते हैं। ये प्रत्यक्ष कहने का एक कारण वो स्पष्ट ज्ञान को ही कहते हैं। ये जो सारे हमने कर्मभावी वगैरह जो देखे ना, वो अस्पष्ट ज्ञान की बात है, ये दूर पदार्थ है तो उसको नहीं जान सकते आदि, वो अविशद ज्ञान कहा उसको। एक तो उस संबंधी ज्ञान ही नहीं होगा दूरवर्ती पदार्थों के बारे में, और वो भी किसको जानेंगे जो हमारे फोकस में उसको जानेंगे? आंखों से देख रहे तो आंखों को चिपकाओ, देखेंगे नहीं देखेंगे? योग्य अंतर में स्थित हो तो हम उसको देख पाते हैं। अब ये पुस्तक भी विशिष्ट, हम इतने डिस्टेंस में रखो तो हमको ये अक्षर दिखाई देंगे, बहुत दूर रखो बहुत नजदीक तो नहीं हो सकते। ये तो क्षोभसम ज्ञान की पराधीनता है। अब और कहते और क्रम से ही जानते हैं। केवल ज्ञान जो वो युगपत जानता है, और बाकी ये सब अभी हमने बाकी केवल ज्ञान को छोड़कर अन्य जो है वो क्षोभसम ज्ञान है, वो क्रमभावी ही है, क्रमसर ही जानते हैं। और उसमें भी दर्शन उपयोग फिर ज्ञान उपयोग ऐसा भी क्रम चलता है। वैसे भी वो भी एक देश प्रत्यक्ष, केवल ज्ञान जैसा पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है, इतना स्पष्ट नहीं है, उसको विकल्प प्रत्यक्ष भी कहते हैं। हाँ, केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा। अब कहते हैं और आवरण ज्ञान को उत्पन्न नहीं करते। क्या कहते हैं? जो ज्ञानावरण है वो ज्ञान को उत्पन्न करने वाले नहीं है। जैसे हमने देखा ना, आकाश में मेघ आते हैं वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, वो तो आवरण करने वाले हैं। क्योंकि जो विनाशक है उन्हें उत्पादक मानने में विरोध आता है। आवरण का शब्द ही वो ढकने वाले, विनाशक है, तो वो ही ज्ञान को उत्पन्न करने वाले कैसे हो सकते हैं? इसलिए केवल ज्ञान क्षयोपशमिक भाव को ही प्राप्त होता है ऐसा भी नहीं है।
देखो यहाँ पर ये जो बात बताई है कि जो आवरण करता है, जो विनाशक है, उसे उत्पादक कैसा मान सकेंगे हम? वैसे जो राग है वो संसार में रुलाएगा तो राग से मोक्ष होगा, ये बात कहाँ से आई? ख्याल में ये सिद्धांत अपने को ये क्या दिया है कि जो विनाशक है तो ये तो मोक्ष मार्ग का विनाशक है, उससे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? इसमें से हम द्रव्यनियोग भी गठित कर सकते हैं।
देखो आवरण ज्ञान को उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि जो विनाशक है उन्हें उत्पादक मानने में विरोध आता है। इसलिए केवल ज्ञान सार्वभौमिक भाव को ही प्राप्त होता है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सार्वभौमिक भाव साधन सापेक्ष होता है, अतः उसके केवल रूप होने में विरोध आता है। पहले हमने देखा ना, वो सार्वभौमिक ज्ञान है वो साधन सापेक्ष है, और केवल ज्ञान वो निरपेक्ष ज्ञान है। क्षार यानी भस्म से ढकी हुई अग्नि से निकले हुए बाष्प को अग्नि नाम नहीं दिया जा सकता, न उसमें अग्नि की बुद्धि उत्पन्न होती है और न उसमें अग्नि का व्यवहार ही होता है, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। ये तो दृष्टांत दिया उन्होंने। अतएव ये सब मति आदि ज्ञान केवल ज्ञान नहीं हो सकते। जो सार्वभौमिक ज्ञान है वो केवल ज्ञान नहीं हो सकते, इस कारण से केवल ज्ञान सार्वभौमिक भी नहीं है। ये अन्य अन्य भाव नहीं है, वो बात उन्होंने बता दी। केवल ज्ञान क्षायिक भी नहीं है, क्योंकि क्षय तो अभाव को कहते हैं, क्योंकि अभाव को कारण होने में विरोध आता है। इन सब विकल्पों को मन में करके, वहां भी क्षायिक भी, ये तो क्षायिक लब्धि पर घटाया, क्षायिक यानी क्षय से उत्पन्न हुआ, तो क्षय से उत्पन्न हुआ आवरण का क्षय, परंतु फिर भी वो इससे आवरण का क्षय हुआ है, परंतु यहाँ क्षायिक भाव उत्पन्न हुआ ना, वो क्षायिक लब्धि से कहेंगे। ये मन में पकड़कर वो प्रश्न पूछ रहे, ये तो प्रश्न को एक्सप्लेन कर रहे, उसका उत्तर तो अभी आने वाला है कि क्योंकि अभाव को कारण होने में विरोध आता है। इन सब विकल्पों को मन में करके जीव केवल ज्ञानी किस कारण से होता है, यह प्रश्न किया गया। यह प्रश्न क्यों किया, उसकी ये चर्चा है। अब उसके उत्तर में कहते हैं, खैयाए लब्धिये, क्षायिक लब्धि से जीव केवल ज्ञानी होता है। केवल ज्ञानावरण का क्षय तुच्छ अर्थात अभाव मात्र है। पहले आपको प्रश्न पूछा ना, ये अभाव से नहीं होता तो काहे से होता है, तो वहां तो प्रश्न मन में रख कर ये प्रश्न पूछा गया था, क्षायिक से होता है क्या, क्षोभम से होता है क्या, उदय से होता है, इस तरह से अनेक प्रश्न थे मन में, इसलिए प्रश्न पूछा। अब उसका उत्तर यहाँ बता रहे हैं। केवल ज्ञानावरण का क्षय तुच्छ यानी अभाव मात्र है, इसलिए वह कोई कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञानावरण के बंध सत्व और उदय के अभाव के साथ रूप अनंत वीर्य वैराग्य सम्यक्त्व व दर्शन आदि गुणों से युक्त जीव द्रव्य को तुच्छ मानने में विरोध आता है। यानी यहाँ जहाँ केवल ज्ञानावरण का क्षय है वहाँ जीव में भी कुछ प्रकट है ना, तुच्छ ने अभाव, केवल ज्ञानावरण का अभाव है परंतु अन्य का तो अभाव नहीं है। अनंत वीर्य प्रकट है, सम्यक तो प्रकट है, दर्शन प्रकट है, ये सारे प्रकट हो गए। दूसरे भाव का अभाव रूप होना विरोध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भाव और अभाव स्वभाव से ही एक दूसरे को सर्वात्म रूप से आलिंगन करके स्थित पाए जाते हैं। क्या बात कहते हैं, भाव और अभाव, क्या लिखा, उत्पाद और व्यय यानी जो भाव है ना, भाव का अभाव रूप होना विरोध नहीं है, हर समय चल रहा है। और जो भाव है और वो अभाव है, वे स्वभाव से ही एक दूसरे को सर्वात्म रूप से आलिंगन करके, क्या
देखो, आत्मा में भाव नाम का भी गुण है और अभाव नाम का भी गुण है, ये दोनों एक साथ वर्तते हैं। आत्मा में अस्ति नाम का भी धर्म है और नास्ति नाम का भी धर्म है, तो ये दोनों एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। ये बात यहाँ समझा रहे कि भाव और अभाव स्वभाव से ही एक दूसरे को सर्वात्म रूप से आलिंगन करके स्थित रहते हैं, यानी एक ही द्रव्य में एक ही क्षेत्र में वो दोनों ही एक साथ एक समय में रहते हैं। यानी मेरा भाव यानी सद्भाव है और उसी समय मेरा अभाव है यानी पर द्रव्यों में मेरा अभाव है, ऐसी भी बात हम ले सकते हैं, अस्ति नास्ति की अपेक्षा से भी ले सकते हैं और अन्य भी अनेक अपेक्षा है। यानी दो विरुद्ध जो धर्म है कहो या गुण है कहो, उनको एक साथ रहने में, जैसा आपने बताया कि उत्पाद और व्यय दोनों परस्पर विरुद्ध दिखते हैं लेकिन वो एक दूसरे को पूरक भी है।
और यहाँ तो दो द्रव्यों में ये कारण कार्य भाव घटित करे ना, ज्ञान आवरण का अभाव और यहाँ केवल ज्ञान का भाव सद्भाव या उत्पाद, इसके होने में कोई दोष नहीं है, ये एक साथ पाए जाते हैं। जो बात पाई है उसमें विरोध नहीं होता क्योंकि विरोध का विषय अनुपलब्धि है, इसलिए जहां जिस बात की उपलब्धि होती है, क्या कहते हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो हम कहते ये विरोध की बात ये हो नहीं सकती, परंतु यहाँ उसकी उपलब्धि यानी अस्तित्व पाया जाता है। केवल ज्ञान आवरण का अभाव होता है और यहाँ केवल ज्ञान पाया जाता है, उपलब्धि है उसकी। केवल ज्ञान आवरण के अभाव में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होते हुए पाई जाती है, इसलिए फिर विरोध का अस्तित्व मानने में ही विरोध आता है। यानी वहां विरोध नहीं हो सकता, ये डबल बात है ना, ये तो ज्ञान मार्गणा हो गई। अभी अब संयम मार्गणा की बात करेंगे। देखो संयम मार्गणा की अपेक्षा कितने भेद होते हैं, संयम मार्गणा हमें अकेले संयम के भेद नहीं पूछे, तो संयम मार्गणा की अपेक्षा अगर कहेंगे तो कोई असंयमी है, कोई संयमा संयमी है, तो कोई संयमी है। अब जो संयमी है उसमें फिर और हम भेद करेंगे, कोई सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयम। तो पहले असंयम वाले एक से चार गुणस्थान तक असंयमी कहेंगे, पांचवें गुणस्थान वाले संयमा संयमी और छठे से आगे जो ये संयमी है, तो ये संयम मार्गणा की अपेक्षा यहाँ घटित कर रहे। तो संयमानुवादेन संजदो, पहले संयमी लिए, सामाय छेदोवट्ठान शुद्धि संजदो नाम कदम भवदी, जो संयत है वो कैसे होते हैं ऐसा पूछा। उस संयतों में भी एक विशिष्ट नाम लिया, सामायिक छेदोपस्थापना वाला। नीचे उसका अर्थ किया, देखो संयम मार्गणानुसार जीव संयत तथा सामायिक छेदोपस्थान शुद्धि संयत किस कारण से होता है, अब इसको विस्तार से समझाते। ये जो संयम है वो चार प्रकार का बताएंगे। जैसे हमने कोई भी विषय जानना है तो उसमें भी उसका नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव देखे, वैसे संयम पर भी घटित करते हैं। नाम संयम, स्थापना संयम, द्रव्य संयम और भाव संयम, इस प्रकार संयम चार प्रकार का है। नाम और स्थापना संयम ज्ञात है, ज्ञात है ने अभी हमें पता है, संयम नाम रख देना वो नाम संयम है और किसी में वो स्थापना करना वो स्थापना संयम है। द्रव्य संयम आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार का है, हमने हमेशा देखे ना दो भेद करते हैं, आगम द्रव्य संयम और नो आगम द्रव्य संयम। आगम द्रव्य संयम में क्या लेंगे हम, संयम संयम संबंधी आगम का जानने वाला परंतु वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं है, उसको हम आगम द्रव्य संयम कहेंगे। नैगम नहीं, यहाँ ये जैसे ना द्रव्य द्रव्य नहीं कैसे लगता है, ये निक्षेप लगाने ना, द्रव्य निक्षेप कैसे है, जैसे अभी श्रेणिक राजा को हम क्या कहेंगे, ये हमारे भावी तीर्थंकर है। भविष्यकाल की पर्याय को अभी उपचार किया वहां पर, वैसे यहाँ पर क्या है, वो जानने वाला है परंतु अभी उपयोग नहीं है उसमें, फिर भी उसको अभी वो जानने वाला है, आगम कह देना, आगम द्रव्य संयम। द्रव्य संयम यानी संयम की बात को जानने वाले जीव की बात है। तो तो द्रव्य संयम आगम और नुआगम के भेद से दो प्रकार का है। आगम द्रव्य संयम ज्ञात है और नुआगम द्रव्य संयम के तीन भेद है। आगम है वो जानने वाला जीव, और नुआगम में अभी वो जानने वाले जीव का शरीर, कौन सा शरीर, वर्तमान का भी हो सकता है, भूतकाल का या भविष्य पर्याय का भी, उन शरीरों को भी नुआगम द्रव्य संयम कहेंगे। तो ये उसको ज्ञायक शरीर कहा, तो उसका पूरा नाम ज्ञायक शरीर नुआगम द्रव्य संयम। ज्ञायक शरीर ने ज्ञायक जीव का शरीर हो, शरीर को भी वो संयम कहा। फिर भव्य नुआगम द्रव्य संयम, यहाँ शरीर को नहीं कहा, जीव को, पर कौन सा जीव, जो भविष्य काल में संयम के प्रावृत को जानने वाले हैं, संयम संबंधी आगम को जानने वाले है, भविष्य में कोई 20 साल के बाद जानेगा, कोई अगले भव में जानेगा, उस जीव को भी अभी से कहेंगे हम उसको। और तद व्यतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त नहीं, इनके अलावा नो आगम द्रव्य संयम। अब ज्ञायक शरीर और भव्य ज्ञात है, ज्ञा के ऊपर बिंदी आ गई। अब तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य संयम, ये यहाँ डबल प्रिंट हुआ है, ये नीचे की लाइन में चले जाना, अभी बाद में कहाँ काटना मैं बताऊंगी। ये भव्य ज्ञात है लिखा है ना, उसके नीचे के लाइन में तद व्यतिरिक्त है ना, वहां से पढ़ना, और उसके पहले वाला जो है वो पेंसिल से काटो, अभी पेन से कुछ मत करना, क्या काटना है वो मैं पढ़ रही हूँ। तद व्यतिरिक्त नुआगम द्रव्य संयम, यहाँ तक तो उन्होंने फुल स्टॉप दिया है। ज्ञायक और भव्य ज्ञात है वो शात किया है, ठीक है, परंतु वो पूरा ही कट करना है। देखो अब कहाँ से पढ़ना है, अभी यहाँ जो हम भव्य ज्ञात है लिखा था ना, उसके नीचे तद व्यतिरिक्त है वो रखना है, वहां से पढ़ेंगे, बीच वाला काट देना, और नो आगम करना, प का ग करना। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य संयम किसको कहना, तद व्यतिरिक्त यानी इनके अलावा, जो जीव का शरीर भी नहीं है और जो भविष्य वाला जानने वाला जीव भी नहीं है, तो किसको कहना, तो संयम के साधनभूत पिच्छिका, आहार, कमंडलू, पुस्तक आदि को कहते, इनको भी ये द्रव्य संयम कहेंगे। संयम के साधनभूत ऐसे जो ये अन्य चीजें हैं, तद व्यतिरिक्त जीव और उसके शरीर के अलावा अन्य चीजों को भी यहाँ द्रव्य संयम कहा है। कौन कौन है, पिच्छी है, वो संयम के लिए जो आहार ग्रहण करते उसको भी, वो जो पिच्छी वगैरह रखते हैं, कमंडल रखते हैं, पुस्तक, उसको भी कहते हैं। अब भाव संयम की बात, ये जो है ना नाम स्थापना द्रव्य भाव, भाई ये हमने धवला पहले पुस्तक में बहुत विस्तार से लिए, बहुत विस्तार से, ये हर अलग हर जो नया सब्जेक्ट आता है उसमें ये नाम स्थापना द्रव्य भाव घटित करते हैं, तो पहली बार सुनने वाले को ये बहुत कंफ्यूजन लगता है, परंतु कोई बात नहीं, आप जब धवला भी पढ़ेंगे, अभी तो आपने मंगाई है ना वहाँ पर अटलांटा में, पढ़ेंगे भी सुनेंगे भी शायद आप, तो बिल्कुल आपको बराबर फिट बैठ जाएंगे। अब ये भाव संयम, पहले हमने नाम स्थापना और द्रव्य की बात की, अब भाव की बात है। भाव संयम में आगम और नुआगम के भेद से दो प्रकार का है। आगम भाव संयम ज्ञात है, ज्ञात है ने अभी जो संयम संबंधी आगम को जानने वाला और वर्तमान में उसी में उपयोग है, उसको कहेंगे आगम भाव संयम। और नो आगम भाव संयम को, उसमें तीन प्रकार की है नो आगम भाव संयम में, क्षायिक, क्षावशमिक और औपशमिक। अब इन संयमों के प्रकारों में से किस प्रकार से संयम होता है यह प्रश्न किया है। ये सारा विस्तार से बताने की बात क्यों है, ये प्रश्न क्यों पूछा, तो इतने सारे जो संयम के भेद बताए नाम स्थापना द्रव्य भाव के, उसमें से किसको हम समझेंगे। इसी प्रकार सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संयुक्तों का भी निक्षेप करना चाहिए। इसको निक्षेप कहते हैं, नाम स्थापना द्रव्य और भाव इनको निक्षेप कहते हैं। तो इनमें भी ऐसे ही निक्षेप लगाना, और फिर वहां भी प्रश्न होगा कि किस निक्षेप की बात यहाँ लेंगे, तो यहाँ वो नौ आगम भाव की बात चलेगी, उसका उत्तर अभी हम कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकन वो सदा देत होड़ो। विनोद भाई।